بالله وكفى الذين
Recording
استقاموا
in
مع بعض.
progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. کیا کر رہے تھے بھائی؟ کلاس کلاس میں پڑھ رہے تھے جی. محمد اچھا چلو، اور کوئی بتائے؟ چلو بتاؤ. عربین وار؟ اچھا وہ تو ہم نے ابھی پڑھنا ہے جی. ریحان، آپ ریحان جی سر بتائیں کس کا واقعہ؟ تیمم کا واقعہ. اچھا جی، اچھا آپ محمد صاحب جی، ورلڈ وار. ہاں ورلڈ وار کی بات جو ہے وہ ہم نے ابھی شروع کرنی ہے، بتائی نہیں تھی جی. ریحان آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے. اچھا کسی کو بس وہ والا جملہ یاد ہے کہ کون سا جملہ بتا رہی ہے؟ کیا پوچھنا ہے؟ کون سا جملہ بتا؟ اللہ پوچھنا بھی یہی تھا ماشاء اللہ جی. کیا تھا؟ کیا جملہ تھا؟ ہاں ان نکی لمبارکتن، ان نکی لمبارکتن، ان نکی لمبارکتن. تین دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کس کو یہ فرمایا تھا؟ اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی کو فرمایا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ واقعہ ہم نے، آخری واقعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دوسری مرتبہ گم ہو گیا تھا. پہلی مرتبہ گم ہوا تو وہ سارا کا سارا تماشا ہوا نا، وہ عبداللہ بن ابی منافق والا. پھر اس کے بعد دوسری دفعہ گم ہو گیا تو اس وقت یہ تھا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سو رہے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور کتاب سے ہم نے پڑھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر کے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، اور فجر کا وقت جو ہے وہ بس آنے والا تھا، پانی کہیں پہ موجود نہیں تھا، اور لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہماری نماز کا کیا ہوگا، وضو کیسے کریں گے، تیمم کا تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو اس وقت. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ دو بھائی ایک اور مصیبت، یہ نگوڑ مارا ہار ہے، نگوڑ مارا ہار، اس کی وجہ سے ایک اور مصیبت، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ گھر میں تشریف لائے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں سر کر کے سو رہے ہیں. انہوں نے آ کر کے نا پیچھے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پیٹ کے اوپر ایسے ایسے کرنا شروع کیا. کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے، تمہارے ہار کی وجہ سے پھر جو ہے مصیبت آ گئی. ٹھیک ہے، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ پتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی پتا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں کیا ہو رہا ہے نا، کون سی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ سیر کروائی جا رہی ہے، کون سی جو ہے وہ وہی آ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، تو کوئی نہیں اٹھاتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اٹھتے تھے. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب اٹھے تو اس وقت پھر تیمم کی آیات نازل ہوئی، اور پھر وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں تم تو بڑی مبارک ہو، تم تو بڑی مبارک ہو، تم تو بڑی مبارک ہو. ٹھیک ہے، اچھا ہوا کیا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہو گیا نا، تیمم ہو گیا، سب نے نماز پڑھ لی، اب جو ہے نا وہ ہار تو مل کے نہیں دے رہا، تو پھر کیا ہوا کہ جب بالآخر فیصلہ ہو گیا چلو بھائی اب چلتے ہیں، تو جو اونٹ اٹھا نا اونٹ کے نیچے ہار تھا. ٹھیک ہے، ہار جو ہے وہ اونٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دیکھیں، تیمم کا واقعہ ہونا تھا، تیمم کی سہولت مسلمانوں کو ملنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اونٹ کو اس جگہ پہ بٹھا دیا جہاں پر کہ ہار تھا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمارے لیے آسانیاں اور ہمارے لیے احکامات سارے کے سارے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، کبھی کوئی واقعہ کروا دیا، کبھی کوئی واقعہ کروا دیا. ٹھیک ہے، اچھا تو اب یہ جب ختم ہو گیا واقعہ، تو اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اب جو ہے نا پھر ہم نے ایک اور بہت بڑا واقعہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں دی بیٹل آف ٹرنچز. ट्रेंच जो है ना वो खंदक को कहते हैं। खंदक का मतलब क्या होता है? खंदक जो है वो जमीन में आप जो है ना वो कोई गड्ढा खोदें, गढ़ा, ठीक है, डीप होल आप डिग करें। लेकिन वो डीप होल जो है ना सिर्फ ऐसा नहीं हो जैसे कि एक कुएं की का होल होता है, वेल का होल होता है, वो तो सिर्फ एक जगह होता है ना यूं करके बस स्ट्रेट नीचे चला जाता है, ठीक है। बल्कि ट्रेंच उसको उस वक्त कहेंगे कि जबकि वो जो होल आपने खोला है ना वो एक लंबी शक्ल में हो, ठीक है, लंबी शक्ल में हो। तो उससे क्या होता है कि उधर के लोग जो है ना वो इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग उधर नहीं जा सकते, ठीक है। तो बीच में जो है ना एक जैसे कि आप अपने आप को बचाने के लिए दीवार बनाते हैं ना, ठीक है, घर के बाहर जो होती है वो दीवार होती है। अब बाहर से चोर डाकू वगैरह जो है वो दीवार अगर नहीं होती तो आराम से घर के अंदर आ जाते, दीवार से क्या होता है कि वो उधर रुके रहते, ठीक है। तो दीवार बनाना जो है ये भी एक मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी दीवार को जो है ना वो क्रॉस किया जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, दीवार को तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन अगर खंदक खोद दी जाए तो खंदक को जो है ना वो इतना आसान नहीं होता कि उसको क्रॉस करके इधर आ जाया जाए, ठीक है, कि बहुत बड़ी सी और चौड़ी सी खंदक होती है, लोग उसके ऊपर से जंप करके नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये गज़वे खंदक जो है वो कहलाता है क्योंकि इसके अंदर खंदक खोदी गई थी। खंदक इज लाइक माइन रवीन, माइन रवीन, नहीं मुझे इसका ठीक नहीं है, माइन रवीन साहब की क्या मुराद हो सकता है वो बताएं, आप क्या कह रहे थे साहब? इतनी बड़ी खंदक कैसे खुद खोलते हैं? खोलते हैं, एक आदमी ने नहीं खोदी थी ना, सारे मुसलमानों ने मिल करके 6 दिन तक लगे रहे थे तब वो खुदी थी, ठीक है। तो वो तफसीलात तो आगे आएंगी इंशाल्लाह जी। हाँ, बारूदी सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछाना, नहीं बारूदी सुरंगें बिछाने का तो ये तरीका होता है कि उसके लिए थोड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और अंदर जो है वो माइंस को जो है वो डाल देते हैं, सुरंग, बारूदी सुरंग जिसको कहते हैं, और उसके ऊपर जो है वो मिट्टी या उसके ऊपर कोई और चीज जो है ना वो डाल करके उसको छुपा देते हैं। वो बहुत गहरी नहीं होती, वो ऊपर ऊपर ही होती है, बस नजर नहीं आ रही होती है, ठीक है। तो वो जो बारूदी सुरंग होती है ना वो बेसिकली एक फ्लैट जैसे कि एक क्या कहते हैं, प्लेट की शक्ल की होती है, मोटी सी एक प्लेट हो गई, उसको जो है वो आपने जमीन के अंदर इस तरीके से छुपा दिया। अब चलने वाले लोग जो जब उसके ऊपर कदम रखेंगे ना, या उनका घोड़ा जो है कदम रखेगा, या उनका टैंक या उनकी कोई गाड़ी जो है वो उसके ऊपर अगर पड़ गई ना, उसकी व्हील उसके ऊपर पड़ गया तो वो ब्लास्ट हो जाता, ठीक है। तो खंदक जो है वो ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, तो वाकया फिर हुआ क्या, खंदक का ये शुरू कैसे हुई, ठीक है, ये तफसील अभी हमने पढ़नी है। तो आपको किसी को याद है कि यहूदियों के साथ एक 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 गजवा हुआ था कुछ अरसा पहले जो हमने क्लास में पढ़ा था, उस गजवे का नाम क्या था? यहूदियों के साथ आखिरी गजवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया था ना, उसका नाम क्या था? किसी को नाम याद? यहूदियों के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ नहीं, वो था गजवा बनी नुज़ैर, नुज़ैर, ठीक है, बनी नुज़ैर का जो कबीला था उनका, यहूदियों का। तो इनके साथ मामला क्या हुआ था कि नबी अलैहि सलाम जो है वो इनके पास गए थे सहाबा कराम के साथ। क्यों गए थे? क्योंकि बनी नुज़ैर और नबी अलैहि सलाम के दरमियान जो था ना वो एक एग्रीमेंट था, एक मुआहिदा था, एक दूसरे को हेल्प करने का मुआहिदा, ठीक है ना, अमन का मुआहिदा जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या था? हाँ, यहाँ पे इन्होंने सही जवाब दिया, बनी वज़ैर नहीं, नुज़ैर, नुज़ैर। तो मुसलमानों एक मुसलमान से जो है वो गलती से किसी किसी का कत्ल हो गया था, ठीक है, जिसके साथ भी मुसलमानों का वो था एग्रीमेंट था। तो अब जो है वो उन लोगों के जिनका कत्ल हो गया था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि हम उनकी दियत देंगे। दियत याद है? जब गलती से किसी का कत्ल हो जाए तो आप जो है ना उनकी फैमिली वालों को फिर बहुत बड़ी तादाद में एक पैसा माल होता है, कई जैसे आजकल जो है ना वो लाखों में दियत दी जाती है, ठीक है। गलती से आपने किसी को गाड़ी से मार दिया, आपका इरादा तो नहीं था उसको कत्ल करने का, लेकिन आपकी गाड़ी से टक्कर उसकी हो गई और वो मर गया, ठीक है ना। तो इस पर दियत दी जाएगी, कत्ले खता कहते हैं उसको, ठीक है, बाय मिस्टेक अगर आप किसी को कत्ल करें। तो जब मुसलमानों को दियत देनी थी और वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बनी नुज़ैर के पास गए, क्योंकि उनके साथ एक मुआहिदा था कि भाई अगर इस किस्म का कोई मसला हो जाएगा तो हम एक दूसरे को मदद करेंगे, इसमें दियत देने में भी मदद करेंगे। तो वहां पर जब आप जाके बैठे तो यहूदियों ने क्या किया कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश करी कि जिस जगह बैठे हुए थे ना उसके ऊपर जो छत थी ना, तो वहां पर एक आदमी को भेजा एक बहुत बड़ा पत्थर दे करके कि ऊपर से जो है वो पत्थर फेंक दो ताकि नबी अलैहिस्सलाम नौजबिल्ला उसके नीचे आकर के कुचल के मर जाए, ठीक है, शहीद हो जाए। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को जबरील अमीन ने आकर के बता दिया था और आप खामोशी से उठे और मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। सारे सहाबी भी बैठे हुए थे उनको भी पता नहीं चला कि क्या हो गया। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा वापस चले गए। फिर बिलाखिर जब वापस नहीं आए तो सहाबा भी उठ करके वापस गए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि इन्होंने मुझे कत्ल करने की साजिश करी थी, अब जो है ना हम इनके ऊपर अटैक करेंगे। जब आप ने अटैक किया तो उन्होंने अपने आप को किले के अंदर महसूस कर लिया था। काफी दिन तक जब मुसलमान उनको सराउंड करके बैठे रहे तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हम जो है ना वो बगैर लड़े जो है ना यहाँ से चले जाना चाहते हैं, बस हमें आप मारे नहीं, हम अपना सारा का सारा माल पैसा सोना चांदी जो है ना वो आपके हवाले करके जाएंगे, हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। तो नबी अलैहि सल्लम ने उनकी इस शर्त को कबूल कर लिया था। तो सारे सहाबा सहारे जो यहूदी थे वो बनी नुज़ैर के सारे यहूदी वो अपने घरों से निकले थे और जितना माल पैसा सब कुछ वो अपने ऊँटों ऊँटों के ऊपर सवार कर सकते थे ना, हत्ता के क्या किया था किसी को याद है, हत्ता के दरवाजों के जो वो बोल्ट्स होते थे ना उनको भी निकाल निकाल करके साथ ले गए थे, कुछ भी नहीं छोड़ा था उन्होंने, ठीक है। और वो लोग जा करके फिर खैबर चले गए, खैबर में बड़े बड़े किले थे यहूदियों के, तो बहुत सारे यहूदी बनी नुज़ैर के खैबर में जाकर के सेटल हो गए और कुछ जो है ना वो और आगे चले गए, शाम चले गए, ठीक है। तो ये जो बनी नुज़ैर वालों को नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से उनके घरों से निकाल दिया ना, तो इसके ऊपर ना वो बड़े गुस्से में थे, शदीद गुस्से में थे वो लोग कि किसी तरीके से हम मुसलमानों से ना बदला लेंगे इस जिल्लत का, इस डिसरिस्पेक्ट का कि हमें घरों से निकाल दिया और हमें जो है। तो अब वो जो है ना वो और वो प्लानिंग करते रहते थे कि कैसे बदला लें। तो अब उन्होंने क्या किया कि इन लोगों ने फिर एक तो ये लोग मक्का मुकरमा गए, ठीक है, इनके कुछ सरदार थे, एक का नाम तो नाम था हुयई इब्न अख्तब, ये यहूदियों का एक सरदार था ये, और इसके अलावा किनाना बिन रबी और चंद एक और लोग थे इनके, ये लोग जो है ना ये सारे के सारे मिलकर के गए मक्का मुकर्रमा मुशरिकीन मक्का के पास, ठीक है। अच्छा इन्होंने कुछ लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं। खंदक मींस ट्रेंच, इट इज द बैटल ऑफ ट्रेंच बिकॉज इन द बैटल द मुस्लिम्स डग अप ए ट्रेंच टू स्टॉप द डिसबिलीवर्स, ओके ठीक है जवाब। अच्छा तो ये सारे मक्का मुकर्रमा गए और वहां पे जाकर के इन्होंने मक्का मुकरमा के काफिलों से ये बात करी कि भाई हम लोगों को मुसलमानों से लड़ना है, ठीक है ना, तो आर यू रेडी टू हेल्प अस और नॉट, तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का तो पहले ही जो है वो बहुत गुस्से में थे और ओहद के अंदर भी वो सही तरीके से मुसलमानों को ज्यादा नहीं मार सक रहे, बहुत मारा भी था लेकिन फतह तो उनको नहीं मिली थी ना, और बदर के अंदर जो है वो इनके 70 लोग जो है वो मारे भी गए थे, बड़े ये लोग तो पहले से ही गुस्से में थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है हम तुम्हारी मदद करते हैं, मुसलमानों पर हमला करने में हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इससे पहले जो है ना तुम हमें यकीन दिलाओ कि हम तुम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना, हम तुम्हारे ऊपर एतमाद कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी मदद के लिए निकलें और तुम लोग जो है ना वो भाग जाओ, तो हमें छोड़ दो, तुम्हारी तो आदत ही इस तरह की, तो तुम हरकतें बहुत करते रहते हो, तो ऐसा कहीं ना हो ना, तो तुम हमें पहले यकीन दिलाओ कि किसी तरीके से यकीन दिलाओ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ भाई हम कैसे तुम्हें यकीन दिलाएं कि हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे और सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि ना हमारे जो बुत है ना यहाँ पर उन बुतों को तुम सजदा करो, ठीक है, बुतों को तुम सजदा करो। अब ये यहूदी जो है आपको पता है ये यहूदी जो है ये बुतों को सजदा नहीं करते, इनके दीन के अंदर इसकी इजाजत नहीं है, ये लोग तो अहलुल किताब है ना, अहलुल किताब, ठीक है, पीपल ऑफ द बुक, मोनोथियस्टिक रिलीजन कहलाता है, ठीक है। मोनोथियस्टिक का मतलब कि ये भी जो है वो अल्लाह ताला को एक मानते हैं और कुछ गड़बड़े वगैरह करते हैं लेकिन बहरहाल एक मोनोथियस्टिक रिलीजन ये कहलाते हैं, ठीक है। बुतों को सजदा करना इनके यहाँ भी हराम है, शिर्क है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मुसलमानों की दुश्मनी की वजह से नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ जो इनको नफरत थी बुग़्ज़ था ना ये तैयार हो गए बुतों को सजदा करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो मक्का मुकरमा के जो काफिरों के बुत थे उनको सजदा कर लिया। फिर उसके बाद काफिरों ने मजीद कहा कि अच्छा अब ये बताओ कि तुम तो पहले किताब हो ना, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा इल्म है, बड़ी किताबें तुमने पढ़ी हुई हैं, तुम बड़े बड़े स्कॉलर्स हो, और तुम्हारी जो किताब है तौरात, ये तो अल्लाह ताला की बहुत शुरू वाली किताब है ना? तो तुम हमें ये बताओ कि हमारा दीन ज्यादा सही है, यानी मक्का मुकरमा के काफिर जो कि मुशरिक थे, बुतों को सजदा करते थे, ठीक है ना, तो उन्होंने पूछा कि हमें ये बताओ कि हमारा दीन ज्यादा सही है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सही है, कौन सा दीन ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हुवई बिन अख्तब और ये जो यहूदी थे ना, इन्होंने इस मौके पर भी, हालांकि इनको पता था कि ये मुशरिक हैं और ये सबसे ज्यादा बुरे लोग होते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम जो है वो शिर्क के खिलाफ है, और नबी अलैहिस्सलाम का दीन जो है इनको पता था, इनको सारी निशानियां मालूम थी नबी अलैहिस्सलाम की ना, कुरान मजीद में जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने बेटों से भी ज्यादा ये नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते थे कि अल्लाह के नबी हैं। लेकिन दुश्मनी, गुस्सा, राइट, और इस किस्म की जो अंदर की फीलिंग्स होती है ना, गंदी फीलिंग्स होती हैं, उसमें इंसान इतना आगे बढ़ जाता है कि वो इतना बड़ा बड़ा भी झूठ बोल देता है। तो इन्होंने झूठ बोल दिया, इन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा ही दीन ज्यादा अच्छा है ना, मुश्रिकीन मक्का को कहते हैं कि तुम्हारा दीन ज्यादा अच्छा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो अच्छा नहीं है ना उस पे, ठीक है। तो जब इन लोगों ने ये दोनों बातें करी ना, तो मुश्रिकीन मक्का जो है वो, उन्होंने कहा हाँ भाई, तुम तो सही लोग हो, है ना, तुम्हारे साथ तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो वो फिर तैयार हो गए इनकी मदद करने के लिए, मुसलमानों पर हमला करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है, इनमें से एक या इनमें से कुछ और, यानी ये जो यहूदी सरदार थे ना, इनमें से कुछ लोग जो है फिर गए वहां पर, गतफान का जो इलाका है, गतफान जो है ना, ये एरिया है यानी शाम के बॉर्डर के ऊपर, मुल्क शाम है ना, ठीक है, उसके बॉर्डर पे जो अरबों का एरिया है ना, वो जगह गतफान कहलाती है। उस जमाने में शाम जो था वो अरब मुल्क नहीं था, वहां के लोग अरबी नहीं बोलते थे। शाम क्या मुल्क था, किसके कंट्रोल में था, कौन लोग वहां पे रहते थे, कौन, रोमी लोग रहते थे, वो रोमन एम्पायर का हिस्सा था, यानी यूरोपियंस वहां पर रहते थे, ठीक है ना, अरब लोग वहां पर नहीं रहते थे। अरब जो थे ना वो रहते थे अप टू गतफान, गतफान वॉज लाइक द बॉर्डर, ठीक है। अच्छा, ये जो गतफानी अरब थे ये ईसाई थे, ठीक है ना, शामियों का इनके ऊपर ऐसा इन्फ्लुएंस था रोमियों का कि ये भी ईसाई थे, ठीक है। तो इन यहूदियों में से फिर कुछ इनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गतफान वालों के पास भी गए, और उनको जाकर के ना, बनी गतफान लोग थे, तो उनको जाकर के कहा कि अगर तुम लोग भी हमारी मदद करोगे ना मुसलमानों पर हमला करने के लिए, तो हम, हमारे जो खैबर के बागात हैं ना, खजूर के बागात, उनमें जितने खजूर पैदा होंगे ना, हम उनमें से आधे खजूर जो है ना उसमें दे देंगे, ठीक है ना, अगर तुम हमारी मदद करोगे। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, आधे खजूर हमें मिल जाएंगे तो बहुत बड़ा खाने का, बहुत बड़ा खाना हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, कई यानी अरसे तक हम उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, बहुत बड़ी चीज है। तो वो अरब जो थे, क्रिश्चियन अरब्स ऑफ गतवान, वो लोग भी तैयार हो गए इनकी मदद करने के लिए, ठीक है। कुरैश तो पहले ही तैयार हो गए थे, ये लोग भी तैयार हो गए। तो अब जो है ना, इन लोगों ने टोटल जो बंदे तैयार किए वो थे 10,000, ठीक है, 10,000 की फोर्स इन्होंने तैयार करी, जो कि उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स थी, ठीक है। ओहद में कितने काफिर
थे,
3,000, ओहद में 3,000 काफिर थे, ठीक है। बदर में कितने काफिर थे वो तो सबको पता होगा, जी 1,000, ठीक है, यहाँ कोई बोलियां नहीं लग रही, 10,000, 20,000, नहीं, 1,000 काफिर बदर में थे, और मुसलमान जो है वो 313 थे। ओहद के अंदर 3,000 काफिर थे और मुसलमान कितने थे, 700 थे, आए तो 1,000 थे लेकिन 300 मुनाफिक थे, वापस चले गए थे, कुल 700 रह गए थे। और यहाँ पर जो है ना, वो 10,000 काफिर की बहुत बड़ी फौज तैयार हुई, और इन्होंने जो है ना फिर हमला हमला के सारी तैयारी मुकम्मल कर ली। नबी अलैहिस्सलाम, आपको पता है कि आप जो है ना जासूस छोड़ करके रखते थे अपने मुखबिर, तो उन जासूसों ने आकर के नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दे दी कि काफिरों ने ना इतनी बड़ी फोर्स तैयार कर ली है और वो आ रहे हैं हमला करने के लिए, ठीक है। अच्छा, मजीद आगे जाने से पहले एक और भी इसके अंदर बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है कि ये गज़वे खंदक जो है ये एग्जैक्टली कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? तो 5 हिजरी में हुआ था। आम मशहूर और यही है ज्यादा पक्की बात कि 5 हिजरी में हुआ था। लेकिन एक बहुत बड़े मुहद्दिस, बल्कि सबसे बड़े मुहद्दिस जो उम्मत के अंदर मशहूर हैं, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, है ना, उनकी सही बुखारी से ज्यादा बड़ी किताब और तो कोई नहीं समझी जाती। असहुल किताब बादल कुरान, कुरान मजीद के बाद जो सबसे ज्यादा सही और कंफर्म किताब है वो सही बुखारी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अगर कोई बात कहते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है भाई, है ना। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, ये जो गजवा हुआ था ना, ये 4 हिजरी में हुआ था, शव्वाल 4 हिजरी, ठीक है। तो बाकी उलमा ने उनसे एग्री नहीं किया कि नहीं, ये शव्वाल 4 हिजरी में नहीं हुआ था, ये शव्वाल 5 हिजरी में हुआ था, ठीक है। इमाम बुखारी ने कहा कि नहीं, मतलब उनके पास आ रहे ऐसे तो नहीं उन्होंने कह दिया था, उनके पास कोई ना कोई तो प्रूफ, कोई ना कोई दलील तो होगी ना। तो उन्होंने ये अपनी दलील के तौर पर क्या बात पेश करी, जिसका ताल्लुक बच्चों के साथ भी बहुत है, इसी वजह से इस बात को हम बयान भी कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या दलील पेश करी, क्या प्रूफ पेश किया? उन्होंने एक प्रूफ पेश किया कि याद है हमने बदर के मौके पर भी पढ़ा था और उहद के मौके पर भी पढ़ा था कि कुछ लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने ना मैदानी जंग से वापस कर दिया था, उनको लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। वो कौन लोग थे? जो कि 15 ईयर्स से छोटे थे, है ना, जो बच्चे थे, यही कह रहे हैं, जो बच्चे थे उनको नबी अलैहिस्सलाम ने वापस कर दिया था, ठीक है। तो उन बच्चों में एक बच्चे कौन थे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला, ये भी एक बच्चे थे, ठीक है। तो इन्होंने फरमाया, और ये पक्की बात है कि उन्होंने यही फरमाया, यानी ये भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि भाई अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला, उन्होंने ना ये कहा था कि जब उहद के दिन मैं लड़ने के लिए नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया ना, तो उस वक्त मेरी उम्र 14 साल थी, ठीक है, 14 ईयर्स, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे वापस कर दिया। फिर उसके बाद जब खंदक के दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम के सामने आया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे वापस नहीं किया, ठीक है ना। अब ये बात हमें पता है और दीगर रीजन की वजह से हमें पता है कि नबी अलैहिस्सलाम 15 साल में वापस नहीं करते थे, जो 15 साल का हो गया उसको वापस नहीं करते थे। तो भाई वो उहद में 14 साल के थे, और उहद कंफर्म है कि उहद कब हुई थी? 3 हिजरी में हुई थी, ठीक है ना। तो अब जब ये 14 साल के 3 हिजरी में थे, तो अगले साल ही 15 साल के हो गए ना, ठीक है ना। तो इस वजह से अगला साल तो जो है वो 4 हिजरी बना, 15 साल के 4 हिजरी के अंदर हो गए, नबी अलैहिस्सलाम उनको वापस नहीं किया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सोचा कि भाई जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि खतना कब हुई थी? 4 हिजरी में हुई थी, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर 4 हिजरी में 15 साल के हो गए, खत्म बात, ठीक है। लेकिन दीगर उलमा ने इसको एग्री नहीं किया, ठीक है। उन्होंने फरमाया कि असल में और भी तफसील है इसके अंदर। एक तफसील तो इसके अंदर ये है कि जब उहद में आपको याद होगा कि अबू सुफियान जो उहद में काफिरों का सरदार थे ना, ठीक है, तो वो जो गए थे ना वापस, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि अगले साल फिर लड़ाई होगी, है ना, फिर हम आएंगे, हम जो है वो लड़ाई करेंगे। तो फिर क्या हुआ था, अगले साल जो है ना नबी अलैहिस्सलाम को याद था कि अबू सुफियान ने कहा है कि मैं आऊंगा दोबारा से लड़ाई करने के लिए, तो नबी अलैहिस्सलाम तो सहाबा को लेकर के मदीना मुनव्वरा से बाहर आ गए और एक मुकाम के ऊपर पहुंच गए कि भाई अब ये काफिर आएंगे और हम इनसे लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अबू सुफियान की जो है ना वो उनकी हिम्मत जो थी ना उस वक्त खत्म हो चुकी थी, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो साल है ना, ये तो कहत का साल है, इसमें जो है ना बारिशें नहीं हुई हैं, फसल नहीं हुई है, और बड़े मसले चल रहे हैं, खाने पीने के मसले पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये तो लड़ने का साल नहीं है भाई, हम नहीं जा रहे लड़ने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने किसी तरह बहाना वहाना करके जो है ना वो लड़ाई के लिए नहीं आए, ठीक है ना। तो इस साल जो है ना फिर कोई लड़ाई हुई नहीं, यानी उहद के अगले साल कोई लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अगले साल ये सारा का सारा वाकया पेश आया कि यहूदी जो है वो मक्का मुकरमा गए और गतफान गए, और फिर उन्होंने सारी फोर्स तैयार करी, ठीक है। तो इस वजह से 2 साल का वक्फा है उहद में, और खंदक में 1 साल का वक्फा नहीं बल्कि 2 साल का वक्फा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में 1 साल जो है वो ये वाला कहत वाला साल था जिसके अंदर लड़ाई नहीं हुई थी, तो उसके अगले साल जो है पर ये मामला हुआ। जी हाँ, तो अब जो है ना फिर जब उलमा ने ये बात करी कि भाई नहीं, ये बीच में 2 साल, ठीक है। तो अब उस वाली बात का क्या जवाब, उसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए ना, जो कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, वो पक्की हदीस है कि भाई जब उहद में आए थे तो मेरी उम्र 14 साल थी, और फिर अगले साल जो है वो 15 साल की हो गई, यानी फिर जब खंदक में आया तो उस वक्त अगर 15 को हो चुका था, इस वजह से जब नबी रसूल वापस नहीं किया, तो भाई इसका भी तो कोई जवाब होना चाहिए ना, ठीक है जी। 16 साल के हो गए, नहीं उन्होंने बताया कि मैं 15 साल का हो गया, अब मुझे उन्होंने आपसे संग कबूल कर लिया, ठीक है। तो अब इसका भी उलमा ने जवाब दिया कि भाई वो जो वो कह रहे थे ना कि मैं 14 साल का हूं, तो उस वक्त हुआ ये होगा कि अभी जो है ना वो 13 साल उन्होंने मुकम्मल कर लिए होंगे, ठीक है ना, यानी बर्थ डे उनकी 13th birthday अभी हुई होगी, और ही हैड जस्ट क्या कहते हैं स्टार्टेड इन द 14th year, जिसको कहते हैं उर्दू में हमारी वालदा मरहुमा कहा करती थी कि ये 14 में लग गया यानी जो आपकी 13वीं जो है सालगिरह हुई है, मतलब मनाते तो हम नहीं है, साहबा ने कभी नहीं मनाई तो हम इसलिए नहीं मनाते हैं, लेकिन बर्थ डे तो होता है ना कि जिस डेट को आप पैदा हुए थे, ठीक है। तो अब जब वो बर्थ डे आपकी गुजर गई ना, तो ये तो आपके हो गए 13 साल मुकम्मल, और अब जो है ना वो आप 14 के हुए नहीं है, लेकिन आप 14 में लग चुके हैं, आपका 14वां साल जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए होंगे ना उहद के दिन, तो उस वक्त उनका जो है ना वो 14वां साल शुरू हुआ होगा, जैसे कि आप फरमा रहे हैं, ठीक है, 14वां साल शुरू हुआ होगा, और फिर उसके बाद जो है ना पूरा का पूरा 14 साल गुजरा होगा, 12 मंथ्स, 14 उनके 14 ईयर्स वाले 12 मंथ गुजरे होंगे, फिर उनका 15th year शुरू हो गया होगा, और फिर 15th year के भी जो है वो कई सारे महीने गुजर गए होंगे, तब जो है वो खंदक का मौका आ गया। तो अब जब वो खंदक के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश हुए, तो ये उनका 15th year चल रहा था, वो 15th year के अंदर लगे हुए थे, लग चुके थे 15वें साल के अंदर, ये उनको 15वां साल चल रहा था, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फिर अब कबूल कर लिया, ठीक है। तो गोया के उहद से लेकर के खंदक तक 2 साल इस तरह भी गुजर सकते हैं, ठीक है ना, कि उनका पूरा का पूरा 14 साल एक गुजरा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा 15 साल एक गुजरा, 2 साल गुजर गए, इस तरह जो है वो 5 हिजरी हो गई, ठीक है। बहरहाल अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चले हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ना 5 हिजरी के अंदर शव्वाल के महीने के अंदर हुआ, ठीक है। फिर और हमने आपको ये बात पहले बता दी थी कि यहूदियों ने जो है वो इस तरीके से बातें कर करके जो है वो 10,000 की फौज तैयार कर ली, और इस 10,000 की फौज का उन्होंने लीडर किसको बनाया, लीडर उन्होंने बनाया अबू सुफियान को, यानी अपना कोई बंदा लीडर नहीं बनाया, ठीक है ना। यहूदियों की ये बात याद रखें, काम आएगी इंशाल्लाह, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये साजिशें करते हैं, ठीक है ना, ये प्लानिंग करते हैं, ये जो है वो लोगों को लड़ाते भी हैं, लोगों को मरवाते भी हैं, लोगों को जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ भी करते हैं, लेकिन ये फ्रंट पे नहीं रहते, ये कभी भी आगे नहीं रहते, ये हमेशा पीछे रह करके ये वाले काम करते हैं, ठीक है ना। आगे ये किसी और को रखते हैं, जैसे कि गज़वे खंदक के अंदर इन्होंने आगे किसको रखा, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में मुसलमान हो गए, ठीक है, जो कि मुशरिकीन मक्का में से थे, ठीक है ना। और उसके बाद इन्होंने जब वो मुशरिकीन का सिलसिला तो खत्म हो गया है ना, तो अब ये किसको आगे रखते हैं, जब ये मुसलमानों के खिलाफ कोई लड़ाई करते हैं, कोई तो साजिश करते हैं, तो अब ये किसको आगे रखते हैं, ये क्रिश्चियंस को आगे रखते हैं, ठीक है ना, ये क्रिश्चियंस को आगे रखते हैं, खुद पीछे रहते हैं। इसके ऊपर हमारे एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, बहुत अच्छे आलिम दीन थे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त आर्टिकल लिखा जो हम बहुत सारे लोगों के साथ हर वक्त शेयर करते रहते हैं, मुझे बड़ा पसंद है वो आर्टिकल, ठीक है। उस आर्टिकल का नाम बड़ा मजे का है, ठीक है, वो क्या है, यहूदी दिमाग और ईसाई मशीनरी, है ना, ईसाई मशीनरी इस्तेमाल होती है, मशीनरी इनकी नहीं होती, लेकिन दिमाग इनका होता है, ठीक है ना। मशीनरी किसकी इस्तेमाल करते हैं, ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की, उनको आगे रखते हैं, ठीक है ना। तो आजकल जो है वो अमेरिका बहादुर सबसे बड़ा क्रिश्चियन कंट्री है, तो ये अमरीका को आगे रखते हैं, पीछे तो पीछे पीछे होते हैं, ठीक है। तो बहरहाल इनकी टेक्निक है, ये आगे आएंगे लेकिन बहुत थोड़े दिन के लिए आएंगे, कितने दिन के लिए आएंगे, ये आगे फ्रंट पे कितने दिन के लिए आएंगे, दज्जाल दिन का नाम है, कितने दिन के लिए आएंगे, 40 दिन के लिए, ये टोटल जो है ना 40 डेज के लिए आगे आएंगे, ठीक है ना। क्यों आएंगे? क्योंकि उस वक्त इनका लीडर जो है ना वो निकल चुका होगा पास, ठीक है, और उन 40 डेज के अंदर जो है वो फिर पहला दिन जो है वो साल के बराबर होगा, दूसरा दिन जो है महीने का, इस तरह की बहुत सारी तफसील है हदीस के अंदर, ठीक है, वरना पीछे ही रहते हैं हमेशा। अच्छा, तो अब जब नबी अलैहिस्सलाम को इस हमले की खबर हो गई तो आप सरसरम ने जैसे उहद में किया था, ठीक है, कि भाई वहां पर भी अटैक का यानी मुखबरी हो गई थी ना, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा कराम को जमा किया था और उनसे मशवरा किया था। बदर में मशवरा क्यों नहीं किया था सहाबा कराम के साथ? हाँ, बदर में तो हमले हमला कोई था ही नहीं, पता ही नहीं था कि हम, वो तो काफला लूटने के लिए जा रहे थे वहां पर, ठीक है, तो वहां पे जा करके जब पता चल गया कि ये काफला आया हुआ है वगैरह, तो फिर वहां पे जा करके मशवरा किया था कि भाई फोर्सेस को कैसे खड़ा करना चाहिए, कहाँ पे जो है वो हमें रुकना चाहिए, उधर रुकना चाहिए कि इधर रुकना चाहिए, पक्की जमीन पे रुकना चाहिए कि कच्ची जमीन पे रुकना चाहिए, ठीक है ना, मशवरा वहां भी किया था। लेकिन पहुंचने के बाद जब सामने फोर्सेस आ गई, ठीक है ना, लेकिन उहद के अंदर जो है वो शुरू में मशवरा किया और खंदक के अंदर भी शुरू में मशवरा किया, ठीक है, तो जब सहाबा से मशवरा हुआ और बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई ये तो बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इनका मुकाबला करना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कैसे करें, बाहर निकल के मुकाबला करें कि अंदर रह के मुकाबला करें, ठीक है, अरबों के पास यही दो ऑप्शंस थे, नबी अलैहिस्सलाम सलाम अरब थे, बाकी अंसार मुहाजरीन ये सब के सब क्या थे, अरब थे, इनके पास लड़ने के दो ही टेक्निक्स इनको आती थी, ठीक है ना, एक टेक्निक क्या थी, या तो अपने घरों में रह करके डिफेंड करें अपने घरों को, है ना, या ये कि शहर से बाहर निकल करके कहीं और जाकर के डिफेंड करें, ठीक है ना। तो इस मौके पर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने एक नई चीज मुसलमानों को सिखानी थी, एक नया उसूल सिखाना था, एक प्रिंसिपल सिखाना था, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल क्या हुआ कि एक सहाबी थे हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका के वाकई हम बहुत तफसील के साथ पहले पढ़ चुके हैं, कितने साल के थे ये, 300 के ऊपर इनकी उम्र थी, है ना, जब ये मुसलमान हुए, और फिर तो ये कहाँ से आए थे, ये फारस से आए थे, पर्शिया से, ठीक है ना, फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो इन्होंने ना नबी अलैहिस्सलाम सलाम को इस मौके पे एक मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारस के ऊपर कोई बाहर से फोर्सेस आकर के अटैक करती हैं ना, तो फारस वाले लोग जो हैं वो ट्रेंचेस खोदते हैं, खंदक खोद लेते हैं, ठीक है ना, और इस तरीके से अपने आप को डिफेंड करते हैं। फारस की जो है ना ये ट्रेडिशनली या हिस्टोरिकली फारस की सबसे ज्यादा लड़ाई जो है वो किसके साथ होती थी, रोमन्स के साथ, ठीक है ना, 1000 साल से ज्यादा रोमन्स और पर्शियंस की लड़ाइयां होती रही, लड़ते रहे, कभी जो है वो फारिस जो है वो जीत जाते थे, कभी जो है वो रोमन्स जीत जाते थे, कभी फारिस जीत जाते थे, कभी रोमन्स जीत जाते थे। रोमन्स जो थे ना वो टेक्नोलॉजिकली उस जमाने में सुपीरियर नहीं होते थे, ठीक है ना, उस जमाने में जो ज्यादा सुपीरियर, ज्यादा एडवांस और ज्यादा वेल डिसिप्लिन और अजीब अजीब उनके हालात किताबों के अंदर लिखे हुए हैं वो फारसी होते थे, ठीक है ना, फारसियों की फोर्सेस जो थी ना वो बहुत स्ट्रांग होती थी और उनके लड़ने की टेक्निक्स भी बड़ी अजीब और गरीब किस्म की होती थी, रोमन्स को समझ में नहीं आता था कि इनके साथ कैसे लड़े, ठीक है ना, लेकिन फिर भी रोमन्स जो है वो जीत जाते थे कभी कभी, ठीक है, वो कैसे जीतते थे, तादाद उनकी ज्यादा होती थी, नहीं तादाद का तो, तादाद तो फारसियों की ज्यादा तो, किताबी थे, किताबी होने की वजह से नहीं, ये तो वजह नहीं होती थी, नहीं अभी आपको हम बता रहे हैं कि जंगी हिकमत अमली जो है ना वो फारसियों की ज्यादा ज्यादा जबरदस्त होती, इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते थे, नहीं इंटेलिजेंस भी फारसियों के पास ज्यादा होती थी और ज्यादा इस्तेमाल करते थे, गद्दार थे, नहीं हाँ ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, मुझे भी नहीं पता था, तब कुदरतन कुछ सुन लिया पढ़ लिया उस वजह से पता चल गया, तो उस वजह से आपको भी नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं, दे पुट द डर्ट बैक इन द ट्रेंच, मजार पहले भी एक उस तरह की बात कर चुका, अच्छा नहीं वो पता है कैसे जीते थे, जासूसों से, जासूस तो भाई उसके बगैर तो कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती, अरेबियन एरिया में करते थे, नहीं पर्शियन, पर्शियन और रोमन्स की बात हो रही है ना, पर्शियन अच्छा बीच में आते थे, नहीं वो बीच में अरब नहीं आता था, अरब नीचे आता है, साउथ में, ठीक है ना। उस जमाने में जो ऊपर का जो इराक जो है ना, वो अरब अरब के थोड़ी था, है ना। अरब तो बस ये अरब था, ऊपर का जो है ना वो तो या तो फारस का एरिया था वो या रोमन्स का एरिया था, ठीक है, या इराक भी था, लेकिन इराक जो है वो अरब बेसिकली नहीं कहलाता था। भटकाते थे, नबी आखिर जमा के वसीले से फतह मांगते थे, क्योंकि अहले किताब थे वो, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात करी, नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से फतह मांगते थे क्योंकि वो अहले किताब थे। नहीं, ये तो बात जो मशहूर है ना, ये यहूदियों के बारे में मशहूर है, ये रोमन्स के बारे में मशहूर नहीं है कि वो नाथ वसलम के वसीले से दुआ मांगते थे। अच्छा चले, ठीक है। रोमन्स के पास जो था ना, वो एक चीज थी जो कि फारसी उसके अंदर आगे नहीं थे, ज्यादा एडवांस नहीं थे, या उनके पास बिल्कुल नहीं थी वो चीज। वो क्या चीज थी? मंजनीक। नहीं मतलब उससे तो आप एक छोटी सी बैटल के अंदर कर सकते हैं ना। नहीं, उनके पास जो था ना वो नेवी थी, नेवी बहरी बेड़ा था इनके पास, रोमन्स के पास, ठीक है ना। वो बहरी बेड़े को इस्तेमाल करके, यानी अपनी नेवल फोर्सेस को इस्तेमाल करके जो है ना, वो पीछे से आकर के अटैक किया करते थे पर्शियंस के ऊपर, ठीक है ना। ये जो पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ और ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी वगैरह, तो इधर से आकर के वो किसी तरह से अटैक करते होंगे रोमन्स के ऊपर, पर्शियंस के ऊपर। ये नेवल फोर्सेस के अंदर ना उनको हमेशा एज हासिल होता था, ठीक है। तो पर्शियंस उनको हरा भी देते थे ना, तो ये बिल आखिर जो है वो नेवी के जरिए से फिर पर्शियंस को जो है ना वो पीछे धकेल दिया करते थे, ठीक है। तो संभव इस तरह से इनकी लड़ाइयां जो है वो चलती रहीं, और फिर आखिर जो है वो आखिर में जो इनकी लड़ाइयां हुई, उनका जिक्र जो है कुरान मजीद के अंदर सूरह रोम के अंदर भी इस लड़ाई का जिक्र है, गलिबत रोम, है ना, कि रोम जो है वो गालिब हो गया वगैरह, इसकी सारी तफसील है। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये मशवरा दिया, नबी अलैहिस्सलाम को ये मशवरा पसंद आ गया, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फैसला कर लिया कि हाँ, हम भी जो है ना वो मदीना मुनव्वरा के गिर्द जो है वो खंदक बनाएंगे। अब ये मदीना मुनव्वरा के गिर्द खंदक बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मदीना मुनव्वरा के गिर्द जो है वो एक सर्कुलर खंदक बनाएंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। इंशाल्लाह अगली जो क्लास होगी, जो कि शायद अगले हफ्ते ना हो, उसके बाद वाले हफ्ते में हो, तो उसके अंदर ना थोड़े से डायग्राम वगैरह बहुत मौजूद हैं, आपको इंटरनेट के ऊपर भी पड़ी होती हैं, तो उससे भी हम आपको बता देंगे कि जी किस जगह पे एग्जैक्टली खंदक बनाई गई थी, सिर्फ उस डायरेक्शन में, हाँ सिर्फ उस डायरेक्शन में खंदक बनाई गई थी जहां से कि वो फोर्सेज आ रही थी, ठीक है ना। और बाकी जो एरियाज है ना, वहां से या तो वो फोर्सेस आ ही नहीं सकती थी, इतना ज्यादा डिस्टेंस हो जाता कि वो इतना घूम करके नहीं आ सकती थी। दूसरा ये भी था कि मदीना मुनव्वरा के गिर्द जो है वो पहाड़ होते हैं, ठीक है ना, जबल सना भी है, और जो है वो दूसरे ये जो क्या कहते हैं वॉल्केनिक काले काले पहाड़ होते हैं ना, बिल्कुल ये क्या है असल में, ये वॉल्केनिक पहाड़ है, इनके अंदर वॉल्केनोज हैं छुपे हुए, ठीक है ना, यानी जिसको कहते हैं ना वो डोरमेंट वॉल्केनोज होते हैं, जो कि अभी फटने वटने का इनको भी चांस नहीं है, ठीक है। तो ये सारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के ऊपर जो है ना वो एक बंदा, चंद बंदे तो घोड़े ओड़े से चढ़ सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी आर्मी नहीं पहाड़ के ऊपर चढ़ करके अटैक कर सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो खंदक बनाई गई थी ना, वो बेसिकली सिर्फ उस फ्लैट एरिया के अंदर बनाई गई थी कि जो के पहाड़ों के दरमियान एक दर्रा टाइप की जगह थी जहां से कि फोर्सेस आ सकती थी, ठीक है। वहां पे जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने खंदक बनाने का हुक्म दिया, और इसके लिए पूरा एक टीम वर्क को आप ने यानी प्लान किया, ठीक है। 10-10 बंदों की टीम्स बनाई, 10-10 सहाबा की टीम्स, और हर टीम को जो है ना वो, यानी जितनी लंबी खंदक बनानी थी उसमें से 10 गज जमीन 10 यार्ड्स एक टीम को असाइन कर दी, ठीक है। अब 10 यार्ड्स जो है वो बहुत लंबा नहीं है, मतलब यार्ड कितना होता है, वो जो कपड़े वाले होते हैं उनके पास एक यार्ड स्टिक होती है ना लंबी सी, ठीक है ना, उसको आप 10 कर लें तो इतना बड़ा एरिया, लेकिन खंदक बनाना आसान काम नहीं था ना, वो बहुत गहरा खोदना था और बहुत चौड़ा खोदना था, तो वो 10 यार्ड ही जो है ना वो 10 बंदों के लिए आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था, ठीक है। तो अब जो है ना सारे के सारे मुसलमान इस खंदक खोदने के अंदर लग गए, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो खुद भी एक टीम का हिस्सा बने, और हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो खुद भी एक टीम का हिस्सा बने जिन्होंने मशवरा दिया था खंदक का, ठीक है। अच्छा, अब सारे सहाबा जो है लगे हुए खंदक खोद रहे, इसके बारे में बड़ी मजे की बातें इंशाल्लाह की तरह पढ़ेंगे। किताब में एक बात लिखी भी नहीं है, लेकिन कहीं और हमने पढ़ी थी बहुत पहले, बल्कि मारफुल कुरान के अंदर, तो वो वाकया जो है ना वो हम आपको भी बता देते हैं, जहन में आ गया। वो क्या हुआ कि 10-10 की जो टीम्स थी ये खोद रही है खंदक, सबसे खंदक खंदक खुद रही है आराम, मतलब मुश्किल है, लेकिन खुद रही है, खुद रही है। जिस टीम के अंदर हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला थे, जिन्होंने जो है वो इस खंदक का मशवरा दिया था, क्या मतलब कि ही वॉज सपोजली एन एक्सपर्ट, है ना, क्योंकि उन्होंने खंदक खुदते हुए पहले देखा होगा, उनके इलाके में ऐसा होता था, तो ही वॉज द अथॉरिटी हियर ट्रेंचेस के बारे में, ठीक है। उनकी जो टीम थी ना, वो खंदक जब खोद रही थी ना, तो हुआ क्या कि सामने एक आ गया पत्थर, बड़ी सी एक चट्टान आ गई, ठीक है, और उस चट्टान को जो है ना ये लोग मारते थे अपने कुदाल टाइप के एक औजार होता है, ठीक है, यानी एक पंजाब में बहुत ज्यादा खेती बाड़ी के अंदर जहां भी होते हैं वो इस्तेमाल होता है कुदाल। ओ क्या वो क्या, यानी ये वो नहीं है, कुल्हाड़ा नहीं, कुल्हाड़ नहीं बल्कि कुदाल, ठीक है। इसके एक तरह से एक फ्लैट चीज लगी हुई होती है और फिर एक डंडा लगा हुआ, तो इसको जो है ना आप जब जमीन पे ऐसे मारते हैं तो यूं करके खींचते हैं तो बहुत सारी मिट्टी उसके साथ आ जाती है, ठीक है। तो कुदाल के जरिए से जो है वो जमीन खोद रहे थे। अब जो ये चट्टान आ गई ना, ये चट्टान बड़ी अनयूजुअल चीज थी, क्योंकि मदीना मुनव्वरा का जो जो लैंड है ये बड़ी सॉफ्ट लैंड है, ये पथरीली नहीं है, जैसे रियाज की जमीन देखे ना आप, जब कभी कोई वो खुदाई हुई भी होती है या कोई ब्रिज वगैरह बना रहे होते हैं तो बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि रियाज पूरा का पूरा एक पत्थर के ऊपर है ना। उसी तरह मक्का मुकरमा की जो लैंड है ये भी पहाड़ों पहाड़ी पहाड़ पहाड़, अगरचे कि वो पहाड़ इतने सख्त नहीं है जितने रियाज के पहाड़ है, लेकिन है पहाड़। मदीना मुनव्वरा में ऐसा नहीं है, बल्कि मदीना मुनव्वरा में बहुत ज्यादा जो है ना वो फ्लैट लैंड है, नरम मुलायम, जहां पर के खूब जो है वो सब्जा उगता है, खजूर के जो है वो खेत उगते हैं, वो नरम जमीन के अंदर ही हो सकते हैं ना। तो ये चट्टान किधर से आ गई, है ना, अनएक्सपेक्टेडली एक चट्टान आ गई। तो सलमान फारसी रजला तारान की टीम जो थी ना वो रुक गई, आगे खोद ही नहीं सकते, है ना, चट्टान जो है वो टूट के नहीं दे रही, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर उलमा ने एक बात लिखी है कि देखें अल्लाह ताला ने सारी टीम्स का जो है ना वो काम चलता रहा, किसी को कोई मसला नहीं हुआ। जिस टीम में इस खंदक टेक्नोलॉजी वाले एक्सपर्ट साहब मौजूद थे ना, उन्हीं का काम रुक गया, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की कैसी कैसी हिकमतें होती हैं कि भाई तुम्हारी अकल जो है ना, तुमने अपनी अकल शरीफ से बड़ा जबरदस्त एडवाइस दी, बड़ी जबरदस्त सजेशन दी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है ना वो इसको अपने आप से मंसूब करने लगो कि हाँ देखो मैंने इतना अच्छी एडवाइस दी थी ना, इस वजह से जो है ना हम जीत गए, इस वजह से मुसलमान जो है ना वो फाते हो गए। नहीं, तुम्हारी एडवाइस जो है ना वो भी मेरी तरफ से थी, मैंने ही तुम्हारी दिल में डाला था कि तुमने एडवाइस दी थी, और मैं ही जब चाहूँ ना तो तुम्हारी एडवाइस जो है ना वो तुम्हारे कोई फायदा नहीं, तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। तो बहरहाल जब ये टीम रुक गई तो फिर ये लोग एज यूजुअल नबी अलैहि सलाम के पास पहुंचे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ जो है वो ये मामला हो गया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ किधर है वो चटा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा के साथ वहां पर आए, और वहां पर आकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि मुझे अपनी कुदाल दो। उन्होंने कुदाल दी तो नबी अलैहि सलाम ने ना उस कुदाल के ऊपर एक जो जोर से मारा ना, ठीक है, तो पहले ही दफा में जो है वो कुदाल, वो जो चट्टान थी ना वो ऐसी लग रही थी जैसे कि वो मिट्टी रेत की कोई चीज है, ठीक है ना। तो एक तो ये होगी कि वो चट्टान जो है ना वो टूट गई, ठीक है, थोड़ी टूट गई, ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि एक फ्लैश ऑफ लाइट निकला, यानी जिससे होता है ना कि चकमाक के पत्थर होते हैं खास किस्म के, उनको अगर आप आपस में रगड़ें तो फ्लैश निकलते हैं, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजों को अगर आप रगड़ते हैं तो आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन अगर बिल्कुल डार्क रूम के अंदर अगर आप दो चीजों को रगड़ें तो एक फ्लैश निकलता है, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, नजर भी बहुत मुश्किल से आता है। तो यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा सा जो है ना जैसे शोला निकला, एक लाइटनिंग हुई, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर दूसरी दफा मारा, ठीक है, दूसरी दफा मारने के ऊपर वो चट्टान जो है वो और टूट गई, और फिर दोबारा से जो है ना वो एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हुई, ठीक है। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने तीसरी मरतबा मारा, तीसरी मरतबा जब कुदाल मारी है तो वो चट्टान जो है ना बिल्कुल टूट गई, यानी रेजा रेजा टाइप की बिल्कुल, यानी क्योंकि अब जब तक वो रेजा 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 नहीं होगी उस वक्त खंदा कैसे खुद सकती है वहां पे, तो ऑब्वियसली वो रेजा रेजा हो गई। लेकिन तीसरी मरतबा भी जो है ना वो बहुत जोरदार किस्म की जो है वो, यानी एक फ्लैश ऑफ लाइटनिंग हुआ। तो सहाबा ने फिर आखिर में नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या था, है ना, ये लाइटिंग जो है वो तीन मरतबा हुई है, अजीब चीज है, इसमें क्या हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसके ऊपर जवाब दिया कि पहली दफा जब उसके अंदर फ्लैश हुआ था ना, तो अल्लाह ताला ने मुझको मुल्क शाम के जो महलात हैं ना, वहां पे जो 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 उनके पैलेसेस हैं वगैरह, तो उनको मुझे दिखाया उसके अंदर। मुझे उनके सुर्ख महल नजर आए, सुर्ख ईंटों से बने हुए जबरदस्त, जो जो हेराक्युलस बादशाह होता था उसके, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने क्यों दिखाए? क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना मुझे ये दिखा रहे थे कि देखो तुम्हारे जो सहाबा है ना, ये मुल्क शाम को भी फतेह करेंगे, ठीक है। फिर जब दूसरी तरफ फ्लैश ऑफ लाइट हुई, तो उस वक्त जो है ना मुझे फारस की कुंजियां अता की गई, यानी मुझे फारस के महलात दिखाए गए, पर्शियंस के, ठीक है। और उसमें जो ये बताया गया कि तुम्हारे जो सहाबा हैं ये पर्शिया को भी फतेह करेंगे, ठीक है ना। और जब तीसरी दफा उसके अंदर फ्लैश ऑफ लाइटिंग हुई, तो उसमें मुझे यमन के बागात दिखाए गए, यमन के महलात दिखाए गए, ठीक है। और उसमें मुझे ये बताया गया कि तुम्हारे जो सहाबा हैं वो यमन को भी कॉन्कर करें, ठीक है। तो सहाबा कराम तो आमन्ना व सद्दकना, नबी अलैहिस्सलाम की किसी बात के ऊपर डाउट करना तो सहाबा ने सीखा ही नहीं था, सहाबा ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जरूर, ठीक है। अभी जरा भूख शुक ज्यादा लग रही है, अभी तो खाने पीने को कुछ है नहीं, ठीक है ना। अभी तो हम हमारे जान के लाले पड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी फौज जो है ना वो आई हुई है और अभी हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, उनसे बचने के लिए जो है वो मिट्टी खोद रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो ऐसे ही होगा, हमें इसके ऊपर कोई शक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मुनाफिकीन भी तो थे, ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन उबई भी वहां मौजूद था और बाकी मुनाफिकीन भी मौजूद थे, तो वो तो फिर वो वाले नफरत वाले और कीने वाले है ना, तो उन्होंने फिर वही अपनी बातें बनानी शुरू करी, ये देखो भाई इनको ये हाल है इनका, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, अपने घरों की हिफाजत का मसला पड़ा हुआ है, और इनको जो है ना उर्दू में क्या कहते हैं इसको, क्या सब्ज बाग दिखा रहे हैं, है ना, और थोड़ी ज्यादा क्रूड उर्दू में कहते हैं हरी हरी सूझ रही है इनको, ठीक है ना, नाउजबिल्ला, ठीक है ना, सब्ज बाग दिखा रहे हैं, यानी लोगों को जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए इनको जो है ना वो कोई और किस्से कहानियां नहीं मिली, अजीब अजीब है, शाम को भी फतह कर लोगे और इधर को भी फतह कर लोगे और यमन को भी फतह कर लोगे। तो ये काम जो है ना मुनाफिकीन का था, और मुनाफिकीन अपना काम जो है वो करते रहते हैं, आज भी करते रहते हैं, पहले भी करते रहते थे, आइंदा भी करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन सहाबा जो थे ना वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, उन्होंने बात को सुन लिया और बात के ऊपर ही मान लिया, बाद में जाकर के जब हुआ तो फिर उन्होंने कहा हमारे महबूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही कहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो खंदक इन लोगों ने खोदी, और इसमें टोटल जो है वो 6 दिन लगे। खंदक खोदने के दौरान नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सहाबा के साथ लगे हुए थे, यानी ये नहीं था कि जी मैं तो अमीर हूँ, मैं तो रसूल हूँ, तो मैं जो बैठा रहूंगा मैं काम नहीं करूंगा, नहीं, नबी अलैहिस्सलाम उनके साथ शामिल रहे इस काम के अंदर, ठीक है। सबसे पहली कुदाल भी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही मारी, यानी जिस तरह से इब्तिदा करते हैं ना, तो भाई जो बड़े होते हैं वो इसकी इब्तिदा करते हैं, तो आप ने सबसे पहले खुद अपने मुबारक हाथों से कुदाल जमीन पे मारी और फरमाया बिस्मिल्लाही व बिही बदईना, कि अल्लाह के नाम के साथ ही हम शुरू करते हैं, ठीक है ना, बिस्मिल्लाही व बिही बदईना वलौ अबदना गैरहु शकीना, और अगर हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत करेंगे ना तो हम तो बहुत ही बदनसीब होंगे, बहुत ही बदबख्त होंगे, शकी होंगे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस मिसरे के जरिए से जो है वो इब्तिदा करी और फिर फरमाया हब्बजन रब्बन हब्बजा रब्बन व हब्बजा दीना, कि कितना ही अच्छा रब है वो और कितना ही अच्छा दीन है ये, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात पढ़ करके शुरू कर दी और फिर उसके बाद जो है वो सहाबा कराम इस काम के अंदर लग गए। तो सहाबा कराम जो है मिट्टी उठा उठा करके लाते थे, यानी मिट्टी को जो है किसी और जगह पे स्टैक अप कर रहे होंगे, यहाँ से जो है खोदते थे, मिट्टी लेकर के जाते थे, और साथ साथ जो है ना वो सहाबा पढ़ते जाते थे कि नहनु नज़ीना बायअउ मुहम्मद, नहनु नज़ीना, हम लोग तो वो लोग हैं कि जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करी है, नहनु नज़ीना बायअउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदन, जब तक हम बाकी रहेंगे ना हम जिहाद करते रहेंगे, हमने इस बात के ऊपर बैत करी है, हमने इस बात पे नबी अलैहिस्सलाम के साथ वादा किया हुआ है, ठीक है। तो सहाबा जो है वो ये पढ़ते रहते थे और नबी अलैहिस्सलाम जब ये सुनते थे ना सहाबा ग्राम से, तो आप जवाब देते थे अल्लाहुम्मा ला ईशा इल्ला ईशा अल आखिरा, ए अल्लाह कोई زندگی نہیں ہے سوائے آخرت کی زندگی کے, ہے نا, کہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت ہی کی زندگی ہے. فاغفر للانصار والمہاجر, بس آپ معاف کر دیجئے غلطیوں کو انصار کی بھی اور مہاجرین کی بھی. ٹھیک ہے, تو یہ گویا کہ بیت بازی کا کمپٹیشن چل رہا ہوتا تھا, ادھر سے وہ شعر پڑھتے تھے, ادھر سے نبی علیہ السلام شعر پڑھتے تھے, اور کتنا خوبصورت ماحول ہوگا یہ. ٹھیک ہے نا, محنت کر رہے ہیں, مشقت کر رہے ہیں اور آپس میں محبت کے اظہار بھی ہو رہے ہیں. ایک جگہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے, اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ, اے اللہ بے شک نہیں ہے کوئی بھلائی سوائے آخرت کی بھلائی کے. فبارک فی الانصار والمہاجر, بس انصار اور مہاجر میں نا آپ برکت عطا فرما دیجیے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو ہے وہ خندق کھودنے کی محنت چل رہی تھی. باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے ابھی تو آپ پوچھ لیجیے. جی آپ کچھ کہہ رہے منافقین شیعوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں تو شیعہ ہوتے ہی نہیں تھے, اس زمانے میں تو منافقین ہوتے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک بہت ڈیٹیل کوشچن ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ تو سمجھانا بھی مشکل ہے, اور آپ کی ابھی شاید اتنی وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کم الفاظ میں سمجھایا جا سکے, کافی ڈیٹیل میں سمجھانا پڑے گا. تو بہرحال, تو منافقت جو ہے نا وہ بس اتنا سن لیجیے کہ منافقت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں جو منافق ہوتے تھے وہ ایک قسم کے منافق ہوتے تھے, اور نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد جو ہے نا پھر منافق دوسری قسموں کے بھی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, جو کہ اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے, بعد میں پھر پیدا ہونے شروع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں نا جنہوں نے دین کو چینج کیا, قرآن مجید کے آیات کو جو ہے وہ چینج کر کے اس کی کچھ اور معنی بنانے شروع کر دیے, تو یہ پھر وہ نئے قسم کے منافق کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو اسی وقت کر دیا تھا, لیکن اس زمانے میں وہ تھے نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فیوچر کی کچھ باتیں قرآن مجید میں بتائی ہیں نا, دنیا کے اندر یاجوج ماجوج نے آنا ہے اور اس طرح ہونا ہے اس طرح ہونا ہے, اسی طریقے سے منافقوں کا بھی ذکر جو ہے وہ بتایا.
اور جب
بند کر کے کراس کر سکتے ہیں, کراس تو کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان خندق کھود کر کے گھروں میں جا کے سو نہیں گئے تھے, ہے نا, خندق کھود کر کے جو ہے نا وہ وہیں کھڑے ہوئے تھے سارے کے سارے. ٹھیک ہے نا, اور وہ حفاظت کر رہے تھے خندق کی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی کافر ادھر سے آنے کی کوشش کرتا تھا نا تو وہ تیروں سے ان کا استقبال کرتے تھے, پہلی بات تو یہ. ٹھیک ہے نا, یہاں سے تیر مارتے تھے تاکہ وہ آگے آ نہ سکے, اور اگر کوئی کراس کرتا بھی تھا نا کسی وجہ سے بہت لمبی جمپ مار کر کے اس نے کراس بھی کر لیا تو ادھر سے پھر لڑائی کر لیے جو ہے وہ مسلمان آگے آ جاتے تھے. لیکن وہ اتنی بڑی خندق تھی کہ وہ کراس کرنے والے بھی زیادہ نہیں ہو, 10 بندوں نے کراس کر لیا, تو ادھر سے علی رضوان گئے, انہوں نے جا کر ایک کو تو ادھر ہی کڑکا دیا, باقی 10 کو جو ہے باقی صاحب نے مار دیا. تو اس طرح کی ساری چیزیں ہوتی رہی, ایک بندے نے کراس کرنے کی کوشش کری تو وہ جو ہے نا وہ بیچ میں ہی گر گیا. ٹھیک ہے نا, گر کر کے یا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی یا کسی صحابی نے اتر کر کے اس کی گردن کاٹ دی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا وہ لوگ کراس کر ہی نہیں پا رہے, کوشش تو کرتے تھے لیکن ادھر سے مسلمان بھی تو لگے ہوئے تھے. جی, سیڑھیاں, تو سیڑھی سے بھی تو آئیں گے تو تیر تو لگے گا نا. بھائی نہیں, لیکن تیروں کی تعداد بھی بہت ہوتی تھی, لاکھوں میں ہوتے تھے لوگوں کے پاس تیر. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے نا یعنی آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ بس جو ہے وہ چائے چلے جا رہے ہیں, تیر لگے چلے جا رہے ہیں, مرے چلے جا رہے ہیں, پیچھے سے اور چلے جا رہے ہیں, اتنا نہیں ہوتے تھے. اتنا ایک تو بہادر بھی نہیں ہوتے تھے بہت زیادہ ہے, اور اتنا اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آگے سے جب تیر آتے ہیں نا تو پھر آپ یہ چیز نہیں کر سکتے. جی, کافروں کی تیر کیا؟ نہیں, یہ تو یعنی بہت دور ہے نا, یہ مدینہ منورہ کا شہر جو ہے نا, آپ نے ابھی جو لوگ ماشاء اللہ مدینہ منورہ جاتے رہتے ہیں تو مسجد نبوی تو جو ہے نا
वो मदीना मुनव्वरा का पूरा शहर मस्जिद नबी से भी छोटा था। इस वक्त जो मस्जिद नबी है ना, वो उस वक्त के शहर से भी ज्यादा बड़ी है। उस वक्त का जो शहर था वो बहुत छोटा सा था, ठीक है। और ये जो खंदक खुदी थी, ये देखिए आप लोगों ने, जगह तो मौजूद है ना, वहां पे लोग जाते भी हैं जुमले सलाह वगैरह देखने के लिए। तो ये जब आप ओहद के लिए जब निकलते हैं ना, बाप मलिक फहद से, जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दरवाजा उस तरफ है नॉर्थ साइड में, है ना, तो वहां से अगर आप निकले तो लेफ्ट पे जा करके वहां पर ये पहाड़ आता है, ठीक है। ये जो खंदक का मकाम है ना, वहां पर आता है, ठीक है। तो ये काफी दूर है, तीर तो क्या वहां से, मतलब आजकल का को कोई मिसाइल ही आ सकता है वहां से, तीर वीर तो बस थोड़ी सी दूर जाता है। मदीना मुनव्वरा तो बहुत दूर है। और कोई, या ऑनलाइन में किसी ने कुछ लिखा है, इससे ये भी पता चलता है कि मुशक्कत के वक्त एनकरेजमेंट भी बहुत अहमियत है, की बहुत अहमियत है, मुशक्कत के वक्त एनकरेजमेंट की बहुत अहमियत है। जी, वालिदैन औलाद को किसी मुश्किल काम में उनकी हौसला अफजाई की बजाय उनको लान तान करना शुरू कर देते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ होता नहीं। जी, और इन्होंने क्या लिखा है, वेल रिप्लाइंग टू व्हेन डिगिंग दे केम द फर्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बात कर देते हैं, वहां पर दावाना अलहमदुल्ला।